بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 12 ہے. آج ہم کتاب مطالعہ پاکستان لازمی ریکارڈ کر رہے ہیں برائے بی اے، بی ایس سی، بی کام، جدید نصاب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے مطابق. اس کتاب کے مصنف محمد نعیم طاہر، پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. یہ صفحہ نمبر 123 ہے. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 12. یہ نہریں دریائے سندھ، جہلم اور چناب سے نکال کر دریائے راوی اور ستلج کی نہروں میں پانی ڈالا جاتا ہے. یہ نہریں مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1، رسول قادر آباد رابطہ نہر. نمبر 2، قادر آباد و بلوکی رابطہ نہر. نمبر 3، بلوکی سلیمان کی رابطہ نہر. نمبر 4، چشمہ جہلم رابطہ نہر. نمبر 5، تریمو سدھنائی رابطہ نہر. نمبر 6، سدھنائی میلسی رابطہ نہر. نمبر 7، توسا پنج نظر رابطہ نہر. اس کے علاوہ نہری آبپاشی کے نظام کے تحت ملک بھر میں مختلف نہریں نکالی گئی ہیں جن کی مدد سے ملک کی زرعی ضروریات کو پورا کیا گیا ہے. اس کے علاوہ مختلف مقامات پر بند باندھ کر بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے جو ملک کی ضروریات کو کافی حد تک پورا کر رہی ہیں. دریائے سندھ سے نہریں نکال کر پاکستان کے وسیع علاقے کو سیراب کیا گیا ہے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے. دریائے سندھ سے 5 مقامات کالا باغ، توسا، گدو، سکھر اور کوٹری پر بند باندھ کر 17 نہریں نکالی گئی ہیں جن سے خوشاب، مصفر گڑھ، سکھر، حیدرآباد اور نواب شاہ کے علاقے سیراب کیے جاتے ہیں. دریائے چناب سے 3 مقامات مرالا خانکی اور حویلی بہادر شاہ پر بند باندھ کر 3 نہریں نکالی گئی ہیں جو درج ذیل ہیں. نمبر 1، اپر چناب. نمبر 2، لوئر چناب. نمبر 3، نہر رنگ پور. یہ نہریں سیالکوٹ، گجراوالا، شیخوپورہ، جھنگ اور ملتان کے علاقوں کو سیراب کرتی ہیں. دریائے جہلم سے درج ذیل 2 نہریں نکالی گئی ہیں. نمبر 1، نہر اپر جہلم. دریائے جہلم میں منگلہ کے مقام پر ایک ڈیم تعمیر کیا گیا ہے جسے منگلہ ڈیم کہتے ہیں. دریائے جہلم کا پانی منگلہ ڈیم میں جمع کیا جاتا ہے. اسی جمع شدہ پانی سے ایک نہر نکالی گئی ہے جسے نہر اپر جہلم کہتے ہیں جو گجرات اور جہلم کے علاقوں کو سیراب کرتی ہے. نمبر 2، نہر لوئر جہلم. دریائے جہلم میں رسول کے مقام پر بند باندھ کر دوسری نہر نکالی گئی ہے جسے نہر لوئر جہلم کہتے ہیں. یہ سرگودا اور گجرات کے علاقوں کو سیراب کرتی ہے. دریائے راوی سے 3 نہریں نکلتی ہیں جن کی مدد سے وسیع علاقے کو سیراب کیا جاتا ہے. نمبر 1، نہر اپر باری دو آب. پہلی نہر مادھو پور کے علاقے سے اپر باری دو آب نکلتی ہے جو بھارت کے علاقے امرتسر کو سیراب کر کے پاکستان میں داخل ہوتی ہے اور لاہور کے علاقوں کو سیراب کرتی ہے. نمبر 2، نہر لوئر باری دو آب. دوسری نہر بلوکی کے علاقے سے لوئر باری دو آب نکلتی ہے جو ساہیوال اور ملتان کے علاقوں کو سیراب کرتی ہے. نمبر 3، نہر سدھنائی. تیسری نہر سدھنائی بند سے نکلتی ہے جسے نہر سدھنائی کہتے ہیں. یہ بہاڑی، ملتان اور ساہیوال کے علاقوں کو سیراب کرتی ہے. دریائے ستلج کی نہریں. فیروز پور ہیڈ ورکس بھارت میں چلے جانے کی وجہ سے اب پاکستان میں متبادل انتظام کے طور پر دریائے ستلج میں 4 مقامات گنڈا سنگھ، سلیمان کی، اسلام اور پنچنت پر بند باندھ کر 9 نہریں نکالی گئی ہیں جو درج ذیل ہیں. نمبر 1، نہر دیپال پور. یہ گنڈا سنگھ والا بیراج سے نکلتی ہے. نمبر 2، نہر فورڈ واہ. یہ ہیڈ سلیمان کی سے نکلتی ہے. نمبر 3، نہر صادقیہ مشرقی. یہ بھی ہیڈ سلیمان کی سے نکلتی ہے. نمبر 4، نہر پاک پتن. یہ نہر بھی ہیڈ سلیمان کی سے نکلتی ہے. نمبر 5، नहर बहावल, ये नहर हेड इस्लाम से निकलती है। नंबर 6, नहर कायमपुर, ये नहर हेड इस्लाम से निकलती है। नंबर 7, नहर मेलसी, ये भी हेड इस्लाम से निकलती है। नंबर 8, नहर अब्बासिया, ये नहर हेड पंजनद से निकलती है। नंबर 9, नहर पंजनद, ये नहर भी हेड पंजनद से निकलती है। दरियाए सतलुज से निकाली गई नहरों के जरिए पाकपतन, साहिवाल, मुल्तान, बिहाड़ी, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान के इलाकों से सैराब किया जाता है। दीगर नहरें, पाकिस्तान में कुछ नहरें ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान के मगरबी दरियाओं से निकालकर आबपाशी के मकासद के लिए बनाई गई हैं। नंबर 1, वारसिक नहरें, पिशावर के इलाकों को सैराब करने के लिए दरियाए काबुल में वारसिक के मकाम पर दो नहरें निकाली गई हैं, जिनकी मदद से वसी इलाके को काबिल काश्त बनाया गया है। नंबर 2, त्रेमू घाट और बहादुर शाह की नहरें, दरियाए चनाब और जहलम पर त्रेमू घाट और हवेली बहादुर शाह के करीब एक बंद बांधकर मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के इलाकों को सैराब किया जाता है। नंबर 3, दरियाए सवात की नहरें, दरियाए सवात में मालाकंड और आबाजई के मकाम पर दो नहरें अपर सवात और लोअर सवात निकाली गई हैं, जिनसे शुमाली इलाकों के मुख्तलिफ अजला को सैराब किया जाता है। नंबर 4, थल प्रोजेक्ट की नहर, दरियाए सिंध में दाऊद खेल के मकाम पर बंद बांध कर माड़ी के लिए एक नहर निकाली गई है, जिससे मुजफ्फरगढ़ और मियावाली के इलाकों को सैराब किया जाता है। पाकिस्तान के डैम, मुल्क में आबपाशी और बिजली की जरूरियात को पूरा करने के लिए बहुत सारे डैम बनाए गए हैं, जिनकी तफसीलात दर्ज ज़ेल हैं। नंबर 1, तरबेला डैम, दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर एक डैम तामीर किया गया है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। इस डैम के जरिए दरियाए सिंध के पानी को जमा करके न सिर्फ आबपाशी की जरूरतों को पूरा किया जाता है, बल्कि बिजली भी पैदा की जाती है। इस डैम की बुलंदी 485 फिट और वसत 900 फिट है। ये डैम 1968 से 1974 के दरमियानी अरसे में तामीर किया गया। नंबर 2, मंगला डैम, ये डैम दरियाए जहलम में मंगला के मकाम पर तामीर किया गया है। ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है। इस डैम से भी मुल्क में आबपाशी की जरूरियात को पूरा किया जा रहा है। इस डैम की बुलंदी 380 फिट और लंबाई 1100 फिट है। नंबर 3, रावल डैम, ये डैम दरियाए कोरांग पर रावलपिंडी के करीब तामीर किया गया है। इस डैम की बुलंदी 80 फिट और लंबाई 820 फिट है। इस डैम के जरिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इलाकों को पानी फराहम किया जाता है। नंबर 4, सोन डैम, ये डैम दरियाए सोन पर तामीर किया गया है। इस डैम की बुलंदी 150 फिट और लंबाई 100 फिट है। इसमें जमा शुदा पानी से रावलपिंडी के इलाकों को पानी फराहम किया जाता है। नंबर 5, चीरा डैम, दरियाए सोन में चीरा के मकाम पर एक डैम तामीर किया गया है। इसे चीरा डैम कहते हैं। इससे भी रावलपिंडी के इलाकों को पानी फराहम किया जाता है। नंबर 6, हब डैम, दरियाए हब में कराची के करीब एक डैम तामीर किया गया है, जिसे हब डैम कहते हैं। इस डैम की मदद से दरियाए हब के पानी को समंदर में ज़ाया होने से बचाया जाता है और जमा शुदा पानी के जरिए कराची के इलाकों को सैराब किया जाता है। नंबर 7, टांडा डैम, दरियाए कोहाट तोई में बांडा टांडा के मकाम पर एक डैम तामीर किया गया है, जिसे टांडा डैम कहते हैं। इसमें जमा शुदा पानी के जरिए कोहाट के इलाकों को सैराब किया जाता है। नंबर 8, दरूत डैम, कराची के बरसाती दरिया बारान के पानी को रोक कर दरूत के मकाम पर बंद बांधा गया है। इस बंद से 80,000 एकड़ फिट पानी जखीरा करके 50,000 एकड़ रकबा सैराब किया जा रहा है। नंबर 9, गोमल डैम, दरियाए योब और गोमल के संगम पर बंद बांध कर न सिर्फ डेरा इस्माइल खान के इलाकों को सैराब किया जा रहा है, बल्कि बिजली भी पैदा की जा रही है। नंबर 10, नारी बोलान डैम, दरियाए बोलान में नारी के मकाम पर एक बंद तामीर किया गया है, जिसे नारी बंद कहते हैं। इसमें जमा शुदा पानी से आबपाशी और बिजली की जरूरतों को पूरा किया जाता है। नंबर 11, कुरम गढ़ी डैम, दरियाए कुरम गढ़ी पर एक बंद तामीर किया गया है, जिसे बिजली की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। इसे कुरम गढ़ी बंद कहते हैं। जदीद आपाशी के जदीद जराए, पाकिस्तान में आबपाशी के लिए दो निज़ाम हैं। नंबर एक सतही आबपाशी का निज़ाम, नंबर दो बराह रास्त आबपाशी का निज़ाम। नंबर एक सतही आबपाशी का निज़ाम, इस निज़ाम में नहरों और खालों की मदद से पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता है, इसे नहरी पानी का निज़ाम कहते हैं। नंबर दो बराह रास्त आबपाशी का निज़ाम, जिन इलाकों में पानी की कमी होती है या नहरी आबपाशी के निज़ाम के तहत पानी नहीं पहुंच सकता, वहां पर ऐसे तरीके अख्तियार किए जाते हैं कि कम से कम पानी के जरिए ज्यादा से ज्यादा इलाके को जेर काश्त लाया जा सके। इस निज़ाम के तहत दर्ज झेल जदीद तरीकों की मदद से आबपाशी की जाती है। नंबर एक आबपाशी बजरिया छिड़काव, इस निज़ाम के तहत कम पानी को ज्यादा से ज्यादा रकबे तक पहुँचाया जाता है। इस अमल में फवारों की मदद से पानी का मुख्तलिफ मुख्तलिफ वक्तों में छिड़काव किया जाता है। इस अमल में पौधों को मस्नूई बारिश के जरिए पानी मिलता रहता है। नंबर दो पानी टपका कर आबपाशी करना, इस निज़ाम में छोटी छोटी नालियों के जरिए पौधों के गिर्द मुसलसल पानी कतरों की शक्ल में टपकता रहता है। ये अमल अमूमन फलों के बागात में आबपाशी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस सिलसिले में मजीद तजुर्बात जारी हैं और मुस्तकबिल में इस निज़ाम के जरिए बेहतर पैदावार हासिल करने में मदद मिलेगी। नंबर 3 बबलर निज़ाम आबपाशी, ये भी एक जदीद निज़ाम आबपाशी है। इसमें भी फव्वारों और नालियों के जरिए कम पानी को ज्यादा से ज्यादा रकबे पर पहुंचाया जाता है। नहरी निज़ाम आबपाशी के फवायद, नंबर 1 इस निज़ाम के तहत आबपाशी करने में कम लागत आती है। नंबर 2 इस निज़ाम में तामीर करदा डैमों की मदद से पानी को समंदर में ज़ाया होने से बचाया जाता है। नंबर 3 डैमों में जमा शुदा पानी को वक्त से ज़रूरत इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 ऐसे इलाके जहाँ बारिशें कम होती हैं और पानी की कमी होती है, वहाँ पर इस निज़ाम के जरिए पानी पहुँचाया जाता है। नंबर 5 इस निज़ाम के तहत दरियाओं के ज़रिए मिट्टी खेतों तक पहुँचती है, जिससे ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। ज़रई निज़ाम ज़रात, पाकिस्तान की ज़रफ़ेज़ ज़मीन और नहरी आबपाशी का निज़ाम ज़्यादा पैदावार हासिल करने में मुआविन और मददगार है। जदीद साइंसी तहकीक और ज़रई आलात की वजह से मौजूदा दौर में ज़रात ने बहुत तरक्की की है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक कुल रकबे का 30% हिस्सा ज़ेर काश्त लाया जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काश्त सूबा पंजाब और सिंध में होती है। हमारे मुल्क की कुल आबादी का 75% हिस्सा ज़रात से मुंसलिक है। ज़रई शोबा मुल्क की आबादी को खुराक फराहम करता है और साथ साथ कई एक सनतों को खाम माल भी मुहैया करता है। ज़रात की अहमियत, पाकिस्तान की मईशत में ज़रात की अहमियत को दर्ज ज़ेल उन्वानात से वाज़े किया जाता है। नंबर 1 आमदनी में इजाफा, पाकिस्तान की तख्लीक से लेकर आज तक ज़रात को मईशत के सबसे बड़े शोबे का दर्जा हासिल है। ज़रई शोबा पाकिस्तान की कौमी आमदनी में इजाफे का सबब है, जिसमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ज़रात का शोबा न सिर्फ मुल्की जरूरियात को पूरा करता है, बल्कि ज़र मुबादला कमाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। नंबर 2 सनअती तरक्की में मदद, ज़रई शोबा सनअती शोबे को माल खाम माल मुहैया करता है। पाकिस्तान में सनअती तरक्की का राज ज़रई शोबे की तरक्की में मुजमिर है, क्योंकि काश्तकारों की आमदनी बढ़ने से मसनूआत की तलब में इजाफा होगा, नए कारखाने कायम होंगे, ज़रई आलात और मशीनरी तैयार करने वाली सनतों को भी फरोग हासिल होगा। नंबर 3 खुराक की फराहमी, इंसान को जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत होती है। पाकिस्तान में लोगों को खुराक फराहम करने में ज़रई शोबा बड़ी अहमियत रखता है। अशियाए खुराक मसलन चावल मकई गंदम सब्जियां फल और दूध वगैरह इसी शोबे से हासिल होती हैं। नंबर 4 रोजगार की फराहमी, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का 75% हिस्सा बिना वास्ता या बिलवास्ता ज़रात से मुंसलिक है। इनमें ज़मींदार काश्तकार मज़ारीन मज़दूर अहले हिरफा मसलन बढ़ई लोहार मोची हज्जाम और दुकानदार इसी शोबे से रोज़ी हासिल करते हैं। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह को कम करने में ज़रई शोबा बड़ी अहमियत रखता है। नंबर 5 सनअती खाम माल की फराहमी, ज़रई शोबे को खाम माल फराहम करता है। मसलन हौजरी दरियां और सूती कपड़ा बनाने के लिए कपास, चीनी और शक्कर बनाने के लिए गन्ना, वनस्पति घी बनाने के लिए मुख्तलिफ अकसाम के तेल वाले बीज, सिगरेट की सनत के लिए तंबाकू और गर्म कपड़े के लिए ऊन की फराहमी भी ज़रई शोबा करता है। इसी तरह ज़रई शोबा सनती शोबे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। नंबर 6, जरई मंडियों का फरोग। जरई पैदावार बढ़ाने से न सिर्फ जरई मंडियों को फरोग हासिल होता है, बल्कि गैर जरई मसनूआत की पैदावार के लिए भी मंडियों को वसत मिलती है। मुल्क में जरई शोबा जितनी ज्यादा पैदावार बढ़ाएगा, उतना ज्यादा मुनाफा जरई शोबे से वाबस्ता लोगों को हासिल हो सकेगा, जिससे गैर जरई मसनूआत की तलब में इजाफा होगा। जरात के तरीके। जरात यानी फसलों की काश्त के 3 तरीके मशहूर हैं, जो मुल्क के जुग्राफियाई हालात की वजह से तश्कील पाते हैं। नंबर 1, आबियारी काश्त। आबियारी काश्त का तरीका मसनू या आबपाशी के निज़ाम से मुंसलिक है। इस निज़ाम में फसलों को वक्त पर पानी मुहैया करने के लिए नहरों और खालों की मदद हासिल की जाती है। पानी दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जाता है। इस निज़ाम के तहत ज्यादातर ऐसी फसलें काश्त की जाती हैं जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है, जो मुनासिब मौसमी हालात और दर्जा हरारत की वजह से जल्द और बआसानी पक कर तैयार हो जाती हैं। नंबर 2, बारानी काश्त। ऐसे इलाके जहाँ बारिशें ज्यादा होती हैं, वहाँ पर अमूमन बारानी काश्त का तरीका राइज है। इस तरीके में फसलों को पानी फराहम करने के लिए बारिशें ही वाहिद जरिया होती हैं। बारानी काश्त का तरीका ऐसे इलाकों में भी राइज है जहाँ पानी ना हो, या वो इलाका मसनू आबपाशी के निज़ाम से मुंसलिक ना हो, वहाँ पर बा अमरे मजबूरी इसी तरीके काश्त से काम लिया जाता है। पाकिस्तान में बारानी काश्त का तरीका बलूचिस्तान और सतह मुर्तफा पोतोहार के कई इलाकों में राइज है। नंबर 3, खुश्क काश्त। ऐसे इलाके जहाँ पर बारिशें कम होती हैं और मसनू आबपाशी का बंदोबस्त भी नहीं हो सकता, वहाँ पर फसलों की काश्त के लिए खुश्क तरीका काश्त से काम लिया जाता है। ऐसे इलाके ज्यादातर खुश्क होते हैं, लेकिन उनकी मिट्टी जरखेज होती है। इस तरीके काश्त में गहरा हल चलाकर बारिश का इंतजार किया जाता है और मुसलसल 2-3 साल तक बारिशों के पानी को जमीन में जज्ब होने दिया जाता है, और फिर तीसरे या चौथे साल में फसल काश्त की जाती है। ये तरीका दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों, मसलन एशिया, अफ्रीका और अमरीका के चंद एक ममालिक में राइज है। ज़रात की इकसाम। पैदावार के लिहाज से ज़रात की इकसाम दर्ज ज़ेल हैं। नंबर 1, अजनास की काश्त। नंबर 2, दरख्तों की काश्त। नंबर 3, बागात की काश्त। नंबर 4, अबरेशम की काश्त। नंबर 5, गल्लाबानी। नंबर 1, अजनास की काश्त। ऐसी फसलों की काश्त जिनसे इंसान अपने खुराक और माली ज़रूरियात पूरी करता है, अजनास की काश्त कहलाती है। वो फसलें जिनसे इंसान खुराक हासिल करता है, इनमें चावल, गंदम, मकई, ज्वार, बाजरा, चाय, तंबाकू और फल वगैरह शामिल हैं। वो फसलें जिनसे इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करता है, उनमें कपास, पटसन, गन्ना, तेल के बीज वगैरह शामिल हैं। नंबर 2, बागात की काश्त। आमतौर पर फलदार दरख्तों की कतारों की शक्ल में काश्त किया जाता है, जो बाग कहलाता है। ये दरख्त ज़रात की एक अहम शाख है। इन बागात में नाशपाती, सेब, अंगूर, आलू बुखारा, खुबानी, पिस्ता, बादाम, अखरोट वगैरह शामिल हैं। तजारती लिहाज से ये बागात बड़ी अहमियत रखते हैं। ये बागात अपने अपने मौसम के अतबार से पैदावार देते हैं। हमारी मुल्क की बरामदात में फलों को बड़ी अहमियत हासिल है, जो इन्हीं बागात से हासिल होते हैं और ज़र मुबादला कमाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 3, दरख्तों की काश्त। दरख्तों की काश्तकारी में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक बार काश्त होने के बाद कई साल तक रुपए खर्च किए बगैर फल देते रहते हैं। दरख्तों की काश्तकारी में अमूमन कीमती दरख्तों को काश्त किया जाता है, मसलन चील, शीशम, रबड़ और देवदार वगैरह। ऐसे दरख्तों से न सिर्फ फल वगैरह हासिल होते हैं, बल्कि इनसे हासिल होने वाली लकड़ी महंगे दामों फरोख्त होती है। नंबर 4, अब्रेशम की काश्त। रेशम हासिल करने के लिए रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, जिसे अब रेशम की काश्त कहते हैं। इन रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्तों पर पालकर इनसे रेशम हासिल किया जाता है। पाकिस्तान में अब रेशम की काश्त पर खास तवज्जो नहीं दी गई, जबकि चीन, फ्रांस और इटली वगैरह में ये सनत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। नंबर 5, गल्लाबानी। ज़रात में जानवरों को बड़ी अहमियत हासिल है। जानवर भी इसी शोबे से खुराक हासिल करते हैं और ज़रात की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जानवरों से हम गोश्त और दूध हासिल करते हैं। इनकी खालों से चमड़े की सनत को फरोग हासिल हो रहा है। जानवरों को पालने के लिए जदीद साइंसी तरीकों पर अमल पैरा हो करना सिर्फ मुल्की ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है, बल्कि दूसरे ममालिक से ज़र मुबादला भी हासिल किया जा रहा है। कुदरती चरागाहों के अलावा बड़ी बड़ी चरागाहें और फार्म बनाए जा रहे हैं जिनसे गल्लाबानी को फरोग हासिल हो रहा है। ज़रात में मशीनों का किरदार। तरक्की याफ्ता ममालिक में ज़रात की तरक्की के लिए जदीद मशीनों को इस्तेमाल में लाया जा रहा है जिनसे ज़रात की पैदावार में 2 से 3 गुना इजाफा हो गया है। हमारे मुल्क में अभी तक पुराने तरीके ही राइज हैं जिनकी वजह से मौजूदा दौर में आबादी के इजाफे की बदौलत मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने बैरूनी ममालिक से जदीद मशीनरी को दरामद किया है और ऐसे इकदाम भी किए जा रहे हैं ताकि जदीद ज़रई मशीनरी को मुल्क के अंदर तैयार किया जा सके। पाकिस्तान में ज़रात के शोबे में इस्तेमाल होने वाली चंद ज़रई मशीनों का तारुफ दर्ज ज़ेल है। नंबर 1, ट्रैक्टर। पुराने तरीकों के मुताबिक खेत में हल चलाने से लेकर ज़मीन की तैयारी तक तमाम काम जानवरों की मदद से लिया जाता था जिनसे मतलूबा नतायज हासिल करने में नाकामी होती थी और वक्त का ज़िया भी होता था। मौजूदा दौर में ये काम ट्रैक्टर की मदद से लिया जाता है जिसकी बदौलत न सिर्फ बेहतर नतायज हासिल हो रहे हैं बल्कि वक्त की बचत भी हो रही है। इसके अलावा इसकी मदद से अजनास को मंडी तक बआसानी पहुँचाया जाता है। ट्रैक्टर की ईजाद से ज़रई शोबे में इनकलाब बरपा हो गया है और फी एकड़ पैदावार में दुगना इजाफा भी हो गया है। नंबर 2, थ्रेशर। पुराने ज़माने में हाथों की मदद से गंदम को भूसे से अलग किया जाता था जिससे बहुत सारी गंदम ज़ाया हो जाती थी और गंदम से भूसा हासिल करने का भी कोई ख़ास इंतज़ाम न था। भूसा जानवरों के चारे में इस्तेमाल होता है। इस तरह सख्त मेहनत से हासिल होने वाली फसल का बहुत सा हिस्सा ज़ाया हो जाता था। मौजूदा दौर में थ्रेशर की इजाद से इन मसाइल का खात्मा हो गया है और पैदावार में खातिरख्वाह इजाफा हुआ है। नंबर 3, चारा काटने वाली मशीन। ज़रात के शोबे में जानवरों की मदद से बहुत सा काम लिया जाता था। इसी तरह जानवरों के लिए चारा भी ज़रात के शोबे ही से हासिल होता था। पुराने तरीकों में हाथ से काट कर जानवरों के लिए चारा तैयार किया जाता था जिसमें चारे का नुकसान होता था और वक्त भी ज़ाया होता। मौजूदा दौर में मशीन की ईजाद से इन तमाम मसाइल पर काबू पा लिया गया है। नंबर 4, ट्यूबवेल। आबपाशी के बगैर ज़रात नामुमकिन है। पुराने तरीकों में ज़्यादातर आबपाशी का इन्हिसार बारिशों पर होता था। बाद असम मस्नूई आबपाशी के निज़ाम से फ़ायदा उठाया जाने लगा लेकिन दोनों तरीकों में भी आबपाशी की ज़रूरियात पूरी ना हो सकी। इसकी वजह से वक्त पर आबपाशी ना होने के सबब ज़रई पैदावार मुश्किल का शिकार थी। मौजूदा दौर में ट्यूबवेल की ईजाद से न सिर्फ इन मसाइल पर काबू पा लिया गया है बल्कि ट्यूबवेल की बदौलत सेम ज़्यादा ज़मीनें भी काश्त के काबिल हो गई हैं जो कि ज़रई पैदावार में इजाफे का सबब है। नंबर 5, कंबाइन हार्वेस्टर। ये मशीन ज़रात के शोबे में जदीद दौर की एक अहम ईजाद है। इस मशीन को चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी की ज़रूरत होती है। इस मशीन की बदौलत न सिर्फ गंदम की फसल को काटा जाता है बल्कि एक ही वक्त में भूसे को अलग करके गंदम हासिल की जा सकती है। पुराने तरीकों में बहुत सारे आदमी मिलकर कई रोज तक ये काम करते थे। इसके अलावा खुले आसमान तले पड़ी फसल खराब मौसम का शिकार भी हो जाती थी। इस मशीन की ईजाद से ज़रात के शोबे को बड़ी तरक्की हासिल हुई है। नंबर 6, स्प्रे करने वाली मशीन। जदीद दौर में फसल को साइंसी तरीकों के मुताबिक काश्त किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जाती है। पुराने ज़माने में बहुत सारी फसलें बीमारियों का शिकार हो जाती थी जिनके तदारुक के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम न था। मौजूदा दौर में सिर्फ न सिर्फ बीमारियों का पता चलाया गया है बल्कि उनके खात्मे के लिए जदीद स्प्रे करने वाली मशीन भी ईजाद की गई है। ज़रई बीमारियों के लिए ख़ास किस्म के जहर इन स्प्रे करने वाली मशीनों के जरिए फसलों पर स्प्रे किए जाते हैं और सेहतमंद फसलें हासिल की जाती हैं। अहम ज़रई मसाइल और इनका हल। पाकिस्तान की ज़रई तरक्की की राह में हाइल रुकावटें या अहम ज़रई मसाइल बेशुमार हैं जिनका तदारुक बहुत बेहद ज़रूरी है। चंद एक अहम ज़रई मसाइल दर्ज ज़ेल हैं। नंबर 1, पानी की कमी। पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में अगरचे मजमूई आबपाशी का निज़ाम कायम है ताहम अभी तक हमारे मुल्क के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आबपाशी की सहूलतें कम हैं। ऐसे इलाकों में पानी की कमी के बायस ज़मीनों को बेकार छोड़ना पड़ता है। अगर तमाम काबिल काश्त इलाकों में आबपाशी की सहूलतें मुहैया की जाएँ तो मजीद ज़मीनों को ज़ेरे काश्त लाया जा सकता है। नंबर 2, सेमोथोर। नहरी पानी के ज़्यादा इस्तेमाल के बायस हमारे मुल्क के बहुत से इलाके इन खतरनाक बीमारियों के बायस नाकाबिले काश्त बनते जा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 लाख एकड़ रकबा सालाना सेमोथोर का शिकार हो जाता है। हुकूमत और किसानों को मिलकर सेमोथोर जैसी बीमारियों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि मुल्क की ज़रई पैदावार में इजाफा हो सके। नंबर 3, तालीमी फुकदान। पाकिस्तान में ज़रात से वाबस्ता लोगों की अक्सरियत अनपढ़ है। तालीमी फुकदान के बायस लोग ज़रात के जदीद साइंसी तरीक़ों से नावाकिफ़ रहते हैं। जदीद तहकीक और नए नए तजुर्बात उनके लिए बेसूद होते हैं जिसकी वजह से ज़रई पैदावार में कमी वाक़ होती है। नंबर 4, ज़राए नक़ल व हमल की कमी। हमारे मुल्क में काश्तकारी ज़्यादातर देही इलाकों में की जाती है। मुल्क के बेशतर देहात अभी तक पुख्ता सड़कों से महरूम हैं। ज़रई अजनास को मंडियों तक पहुँचाने में मुश्किल पेश आती हैं। अगर ज़राए नक़ल व हमल में बेहतरी हो जाए तो काश्तकारों के लिए आसानियाँ पैदा होने की वजह से पैदावार बढ़ सकती है। नंबर 5, फसलों की बीमारियाँ। हमारे किसान जदीद तहकीक से नावाकिफ होने की वजह से फसलों को मुख्तलिफ अकसाम की लगने वाली बीमारियों से लाइल्म रहते हैं जिनकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां हमारे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अगर इन बीमारियों पर इब्तदा ही से काबू पा लिया जाए तो बहुत सी फसलों को बचाकर पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। नंबर 6, गुरबत। हमारे मुल्क के ज़्यादातर किसान गरीब हैं। इनकी काश्तकारी न सिर्फ उनके खानदानों का बमुश्किल पेट पालती है जबकि अक्सर मकरूज होते हैं और इस काबिल नहीं होते कि अच्छे बीज, खाद, जदीद मशीनरी और दीगर कीड़े मार अद्वियात वगैरह खरीद सकें, इसलिए इनकी काश्तकारी पसमानदा रहती है। नंबर 7, मंडियों का नाकिस तरीक़ाकार। काश्तकार मंडियों में जब अपनी फसल लेकर आता है तो कारोबारी हजरात के मुख्तलिफ हरबों के बायस उसे उसकी पूरी कीमत वसूल नहीं होती और उसे बेशुमार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से काश्तकार मायूस हो जाता है और ज़्यादा मेहनत नहीं करता। इकदामात। हुकूमत पाकिस्तान ने ज़रात की तरक्की के लिए कई इकदाम किए हैं। नंबर 1, हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 950 रुपये मुकर्रर की कर दी है। नंबर 2, बड़े फार्म होल्डिंग कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट में शामिल किया जाएगा। नंबर 3, ज़रई शोबे से तमाम पाबंदियों का खात्मा किया जाएगा ताकि किसान को फ़ायदा हो। नंबर 4, हुकूमत ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को कपास की खरीदारी करने, मुनाफे की रकम को काश्तकारों पर खर्च करने और ट्यूबवेल को सस्ती बिजली फराहम करने का ऐलान किया है। नंबर 5, हुकूमत पंजाब ने छोटे काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत कम कीमत पर ट्रैक्टर फराहम करने का ऐलान किया है। प्रति एकड़ पैदावार और अखराजात। पाकिस्तान के ज़रई वसाइल और आबो हवा का बग़ौर जायज़ा लें तो हम ये देखते हैं कि हमारी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा किया जा सकता है और अखराजात में कमी वाकई हो सकती है। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में काश्तकारी 2 मौसमों में की जाती है। एक फसल मौसम सरमा के शुरू में काश्त की जाती है और दूसरी फसल मौसम गर्मा के शुरू में काश्त की जाती है जो बिलतरतीब रबी और खरीफ कहलाती है। पाकिस्तान की मशहूर फसलों की फ़ी एकड़ पैदावार और अखराजात की तफसील दर्ज ज़ेल है। गंदम की पैदावार। पाकिस्तान में तकरीबन 36% रकबे पर गंदम की काश्त की जाती है। मुल्क में गंदम की मजमूई पैदावार का 70% पंजाब में पाया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान के बहुत से इकदाम की बदौलत साल 2000 में पहले की नस्बत काबिल काश्त रकबे में इजाफा हुआ है जो कि 8,575 एकड़ तक पहुँच चुका है और मजमूई पैदावार तकरीबन 2,247 किलोग्राम फी एकड़ तक पहुँच चुकी है जिसमें मजीद इजाफा हो रहा है। अखराजात। पाकिस्तान में गंदम की काश्त के लिए एक किसान को औसतन 5,000 रुपये फी एकड़ से ज़्यादा का खर्च बर्दाश्त करना पड़ता है जो कि दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा बहुत सारे अफराद को मिलकर फसल की काश्त से लेकर कटाई तक मुसलसल मेहनत करना पड़ती है जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में मशीनों की मदद से काम लिया जाता है इसमें ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत नहीं होती। चावल की पैदावार। पाकिस्तान में तकरीबन 10% काबिल काश्त रकबे पर चावल काश्त होता है। हमारा मुल्क अपनी चावल की कुल पैदावार का तकरीबन 1/3 हिस्सा हर साल बैरूनी ममालिक को फराहम करता है। सूबे पंजाब में खसूसन लाहौर के अजला में काश्त किया जाने वाला बासमती इकसाम दुनिया में बेहद मशहूर है। साल 1999-2000 में चावल के रकबे में पहले की नस्बत बहुत इजाफा हुआ है जो कि अब 2,515,000 एकड़ के करीब है। पाकिस्तान में चावल की पैदावार 2,050 किलोग्राम फी एकड़ हो चुकी है। अखराजात, पाकिस्तान में चावल की काश्त के लिए एक किसान को औसतन 8,000 से 12,000 रुपये फी एकड़ तक खर्च करना पड़ते हैं, जिसमें जदीद सहूलतों के पेश नज़र बतदरीज कमी हो रही है। कपास की पैदावार, हमारे मुल्क में कपास की फसल सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श समझी जाती है। गुज़श्ता कई सालों से कपास और उसकी मसनूआत हमारे मुल्क की बरामदी अशिया में सर फहरिस्त हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में 20% नहरी रकबा, जबकि सिंध में 30% नहरी रकबे पर कपास काश्त होती है। इसके अलावा सूबे सरहद और बलूचिस्तान में 10% इलाकों में कपास काश्त हो रही है। साल 2000 में कपास का कुल जेर काश्त रकबा 2,983,000 एकड़ था, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि मजमू पैदावार 541 किलोग्राम फी एकड़ थी, जिसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। यह सफा नंबर 135 है, पार्ट नंबर 12 यहाँ मुकम्मल होता है।